अब यहां से सूरत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा शुरू होता है। अगर आप पूरी सूरत फतह को देखें, जो बाज दफा कुछ मकाम पे आपको बोझल भी लगा होगा कि इतनी ज्यादा तकरार और इतना जंग की बातें वो है, लेकिन पूरे दीन इस्लाम को समझने के लिए बहुत ही खूबसूरत मजमून था इन आयात में। और वो क्या कि असल दीन है क्या। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने अभी से एक आयत में दीन का मकसद और वो बताया, और फिर आखिरी जो आयत है उसमें अल्लाह के नबी के साथियों की हकीकत खोल दी। क्या है देखते हैं। हुवल्लज़ी, वो जात कौन सी, अरसला रसूलहू, जिसने भेजा अपने रसूल को। कौन सी जात है वो, अल्लाह ताला की जात। रसूल से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भेजा अपने रसूल को बिल हुदा, हिदायत के साथ, और वह दीन इल हक की, और सच्चे दीन के साथ, हक दीन के साथ। इससे मुराद कौन सा दीन है, इस्लाम। क्यों भेजा, लियुज़हिरहु अल दीनी कुल्लिही, ताकि जाहिर कर दे, गालिब कर दे इसको, किसको, इस दीन को, अल दीनी कुल्लिही, सारे अधियान पर, दुनिया के बाकी सारे रिलीजन्स पर इस्लाम को गालिब कर दे। इसलिए अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत वाला सच्चा दीन देकर भेजा। वह कफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह गवाह, यानी अल्लाह की गवाही जो है वो सबसे अच्छी है। ये बिल्कुल वही आयत है जो सूरत तौबा की आयत नंबर 33 भी थी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या है कि दीन गालिब किया जाए। अल्लाह ताला एक ऐसा दीन दे के अल्लाह के नबी के पास भेजना चाहते थे कि जिसके मुकाबले में कोई दूसरा दीन ना आए। ये है वो बड़ा मिशन और बड़ा मकसद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का था। और वो क्या कि दीन गालिब हो, दिलों को जोड़ा जा रहा है कि देखो अगर उमरा नहीं कर सके तो क्या हुआ। अल्लाह के नबी की जिंदगी का मकसद तुम्हें सिर्फ उमरा करवाना नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के दीन को गालिब करवाना चाहते हैं। अद्दीन का लफ्ज यहाँ इसम जिन्स है, यानी सारे ही अदियान। आप देखिए कि यहाँ पे वो बात बयान की गई कि अगर एक आयत में किसी को पूरे दीन का मिजाज समझाना होना, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम हमें नमाजें पढ़ाने, रोजे रखवाने, हज सिखाने नहीं आए थे। ये तो छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये तो असल में उस बड़ी कॉज और उस बड़े मिशन की तैयारी की ट्रेनिंग है। 5 वक्त की नमाज मुसलमान को अल्लाह के सामने खड़ा होना सिखाती है, सब्र सिखाती है, हज और उमरा मेहनत करना सिखाता है, जिहाद इंसान को अपनी जान से ऊपर बढ़ना सिखाता है, ज़कात सिखाती है कि इंसान अपना माल अल्लाह के रास्ते में कैसे लगा देता है। इन सारे कामों के बाद जो असल मतलूब है ना, वो क्या है कि मुसलमान अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए निकल पड़े। ये मकसद है। आज लाखों के हिसाब से लोग हज करते हैं, उमरा करने वाले इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दीने इस्लाम तो गालिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। दीने इस्लाम का गलबा जो है ना, वो दलाइल की बुनियाद पे। एक तरफ आप क्रिश्चियनिटी ले आए, ज्यूइज्म ले आए, दुनिया के 10 मजहब ले आए फेमस, और दूसरे मुकाबले में एक मुसलमान को बिठा दें और 10 डिफरेंट रिलीजन्स के नुमाइंदे बैठ जाए और एक मुसलमान हो। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर इतनी सच्चाई और इतनी हकीकत रखी है कि उस एक मुसलमान आलिम की बात उन 10 के ऊपर गालिब आ जाएगी। ये कल भी था, ये आज भी है। मसला कहाँ बिगड़ता है, जब हम ये देखते हैं कि आजकल तो मुसलमान गालिब नहीं लगते। तो यहाँ दो बातें ज़हन में रखिएगा, एक है इस्लाम का गालिब आना और दूसरा है मुसलमानों का गालिब आना। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस्लाम हर दौर में गालिब रहा, लेकिन एक ऐसा भी दौर गुजरा जब मुसलमान भी गालिब थे, और वो कौन सा दौर था, सहाबा कराम का दौर, उनके बाद ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, खैरु कर्नो करनी, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन दौर मेरा दौर है, फिर उसके बाद सुम अल्लज़ीना यलूनहुम, सुम अल्लज़ीना, उसके बाद वो लोग जो उनसे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। हर दौर पहले दौर से बेहतर दौर था। अब जब सहाबे कराम ने इस्लाम को पेश किया, मुसलमानों में ये सब कुछ मौजूद था, तो उस वक़्त क्या था कि इस्लाम जो था गालिब था और मुसलमान भी गालिब थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मुसलमानों ने इस्लाम पे अमल करना छोड़ दिया। उन्होंने वो खूबसूरत बातें जो इस्लाम के रिचुअल्स थे दुनिया में जीने के लिए, उनको बिल्कुल एक बस एक मशीनी तरीके से अदा करना शुरू कर दिया। 5 वक्त मस्जिद में भी जाते हैं, लेकिन आजी नहीं आती, इज्तमाईयत नहीं आती, वो सोसाइटीज नहीं बनती जो होनी चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि इस वक्त मुसलमान दब गए। आज का दौर बिल्कुल यही है, मुसलमान दबे हुए हैं, गालिब नहीं है, लेकिन आज भी इस्लाम दुनिया का मोस्टली स्प्रेडिंग रिलीजन है। इस जवाल के दौर में, आज के अंधेरों के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जिस दीन की तरफ लोग माइल हो रहे हैं वो इस्लाम है। क्यों? इसकी सच्चाई, हकीकत। अल्लाह ने बंदे के दिल के साथ जो एक ताल्लुक रखा हुआ ना, वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इस्लाम गालिब होने के लिए आया, ये मगलूब होके रह ही नहीं सकता। ये बात अगर मुसलमानों को समझ आ जाती है ना, तो उनकी सोच बिल्कुल फर्क हो जाती है। आज हम जब दब के पॉलिसीज को कबूल कर लेते हैं, मशरूत इमदाद ले लेते हैं, हम समझते हैं कि आज अकेले हम पनप नहीं सकते, किसी की मदद लें। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। सब कुछ करके भी देखे मुसलमान दबे में। आज भी क्या तरीका है इस्लाम के मुसलमानों के गालिब आने का, होने का, जब मुसलमान अपने दीन पे अमल करेंगे। सूरत आल इमरान की आयत 139 में भी आता है, वन तुम अला लौना इन कुन तुम मोमिनीन। ओ मुसलमानों, तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। आज भी मुसलमान अपने दीन पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह ताला मुसलमानों को ये गलबा दे देगा। सहाबे कराम की यही खूबी थी कि वो फौरन कबूल कर लेते थे। हम गम पाल के बैठ जाते हैं, जरा सी बात होती है, हमें तकलीफ होती है, अमल से पीछे हो जाते हैं। हालांकि सहाबे कराम जो थे वो असल मकसद को सामने रखते थे। अब आखिरी आयत में अल्लाह ताला इन्हीं सहाबे कराम को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसको गार्ड ऑफ ऑनर कह सकते हैं आप। आज के दौर में आप इसको अवार्ड विनिंग कह सकते हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड कह सकते हैं, और न जाने क्या कुछ। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, नबी का मकसद कितना बड़ा था, और इस मकसद में उनको कामयाब करवाने में जिन लोगों ने साथ दिया उनका मुकाम भी कितना प्यारा था। पहली बात, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये है अल्लाह के नबी का तारुफ, टाइटल, कि अल्लाह के नबी असल में अल्लाह के रसूल हैं। और यही जुमला सुलह हुदैबिया में जब लिखा जा रहा था तो सुहैल बिन अमर ने एतराज़ किया कि ये तो सारे तनाज़े की बुनियाद है, लिहाजा इसको छोड़ा, और फिर वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। कहा, तुम जो मर्जी कहते रहो, लेकिन असल में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रिंग थी, उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था। आज भी आपने वो फोल्डर्स देखे होंगे जो ऑरेंज कलर के, मोहरे नबूवत, तो ये असल में अल्लाह के नबी की जो स्टैम्प थी, एक अंगूठी थी चांदी की, तो उसमें लिखा इस तरह था कि सबसे ऊपर अल्लाह था, फिर उसके बाद मोहम्मद और रसूल। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो अल्लाह के नबी का एक टाइटल था। जब आपने सुलह हुदैबिया के बाद बादशाहों को ख़त लिखे और दावती ख़त दिए, यानी उनको स्पीच के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, तो उस दौर में बादशाहों का असूल था कि वो स्टैम्प्ड ख़त कबूल करते थे सिर्फ। उस वक्त ये स्टैम्प बनी थी और आप उसको लगाते थे और फिर आखिर तक वो आपके पास रही थी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीन मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं। अब इसके आगे थोड़े से लफ्ज़ बड़े मुश्किल आने वाले हैं, इसलिए एक एक लफ्ज़ के साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बात आसान हो जाएगी। वल्लज़ीन मअहू, और वो लोग जो उसके साथ हैं। हु कौन है यहाँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके साथ कौन लोग? यानी सहाबे कराम। कैसे हैं वो? अशिद्दाउ, शदीद है। अशिद्दा शदीद की जमा, शदीद उर्दू में भी आता है ना ये लफ्ज़, शिद्दत। अब शदीद किसको कहते हैं? बहादुर को, ताकतवर मुराद है, ब्रेव थे, एनर्जेटिक। अशिद्दा अला हो तो इसका मतलब होता है फुलां मेरे मुकाबले में शदीद है, लेकिन इससे मुराद यहाँ है मैन ऑफ प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले। शदीद से मुराद बदतमीज नहीं है, बदमिजाज नहीं है, अक्खड़ नहीं है, यानी वो अपने मिजाज में इतने मजबूत थे कि कोई दूसरा रंग कबूल ही नहीं करते थे। उनको इस्लाम के असूलों पे इतना यकीन था कि दूसरे किसी के असूल को अपनाना ही पसंद करते थे। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि सिबगत अल्लाह में रंगे हुए लोग थे, इस्लाम के रंग में रंगे हुए लोग थे। देखिए पहला लफ्ज़ जो सहाबे कराम के लिए अल्लाह ताला पेश करें वो कितना खूबसूरत है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले थे। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपना असर छोड़ जाते हैं और एक वो होते हैं जो दूसरों का भी ले लेते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं कि आप सूखे कपड़े के साथ भी दूसरे के साथ रख देना तो उसका रंग उस पर चला जाता है, और सफेद रंग ऐसा है कि उसके करीब भी कोई हल्की सी भिनक पड़ जाएगी ना तो वो उसके ऊपर उसका असर आ जाता है। ईमान वाला कौन सा होता है? शदीद होता है। इस्लाम के रंग में इतना रंगा हुआ कि आप उसको किसी एथियस के पास बिठा दें, किसी नाफरमान के पास बिठा दें, वो उस पे अपना रंग तो इंशाल्लाह छोड़ेगा लेकिन उसका रंग नहीं लेता। लेकिन जो आप खुद ही अभी सफेद हैं, जिनमें अभी इस्लाम का रंग ही नहीं आया, वो फटाफट दूसरों का रंग ले लेते हैं। तो यहाँ नंबर एक लगा लें ताकि पॉइंट्स में आप नोट कर सकें सहाबा कराम की सिफात को। पहली सिफत जो शदीद थी और जो हमने भी अपने अंदर पैदा करनी है अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम गालिब रहे, और इस्लाम तो गालिब है कि आज के दौर में मुसलमान गालिब आए। अलल कुफार का लफ्ज भी गौर कीजिए, यानी कुफार के मुकाबले में बहुत फॉर्म थे, स्ट्रॉन्ग थे। मुराद ये कि उनकी बातों को बहुत जल्दी कबूल नहीं करते थे। जबकि दूसरी सिफत रोहमा उबैनहुम, रोहमा रहम से, रहीम की जमा मेहरबान, बहुत पिटी फीलिंग करने वाले, मर्सीफुल जो थे वो आपस में थे। बैनहुम से मुराद मुसलमानों में अपनों के साथ रहीम थे, और हकीकत है कि अपनों के साथ नरम दिल रहना ज्यादा मुश्किल होता है। लोग दोस्तों के साथ बड़े नरम होते हैं और बहन भाइयों को काट खाने को दौड़ते हैं, क्यों? कि घर वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक सच्चे मोमिन की ये अलामत है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, और अल्लाह के नबी की बहुत सारी रिवायतों से ये बात मिलती है कि जब तक एक बंदा आपस में मोहब्बत ना करे उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। आज इस्लाम क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि आज मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता, कटे हुए लोग हैं छोटी छोटी बातों में, ना नरम दिल है ना रहम दिल है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं सहाबा कराम हमदर्द थे, गम गुसार थे, तवाज़ो थी, खातर मदारत करने वाले थे, ऐसे लगता था सगे बहन भाई हैं, ईसार था, मुरव्वत थी, अख़ुव्वत थी। कल कत्लो गारत और लूट मार में शिकार थे और आज जब इस्लाम आया अल्लाह ने ऐसा प्यारा उनके दिलों को बदला, नबी सल्लम ने इतनी प्यारी उनकी तरबियत की कि अब वो हर वक्त नरम पड़ते थे। एक शख्स को नमाज में नहीं देखते थे तो फौरन उसका हाल पूछने चल पड़ते थे कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो अंसार ने कैसे रहम का मामला किया कि अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। तीसरी खूबी, तराहुम रुक का अनसुज्जदा, तुम देखते हो उनको रुकू करते हुए और सजदा करते हुए। रुक का रा के उनकी जमा है, यानी रुकू में होते हैं रातों को, या सुज्जदन साजिदुन से यानी सजदे करने वाले होते हैं। यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाही व रिदवाना, अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी की तलाश करते हुए। हाल क्या है कि उनके चेहरों पे सीमा हूँ फी वजूहिम मिन असर सुजूद, उनके चेहरों पे सजदों के निशान मौजूद हैं। ये थी उनकी सिफात, शब्बेदारी, इबादत गुजारी, रातों को इबादत करते थे, रोते थे, उनके चेहरों पे आजजी थी। इससे जाहरी वो मुराद नहीं है जिसको हमारे यहाँ मेहराब कहते हैं, माथे पे पड़ जाता है या घुटनों पे पड़ जाता है। इससे मुराद क्या है कि उनके चेहरों को देख के लगता था कि ये मुसलमानों के चेहरे हैं। जो नमाजें पढ़ते थे उसका असर चेहरों पे भी दिखता था, और हकीकत में एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन सलाम, तो वो बहुत बड़े आलिम थे अपने दौर के यहूद के। जब पहली दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे कि ऐसा चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। यानी एक सच्चे मोमिन के चेहरे पे जो एक इत्मीनान और खुशी और एक नरमी होती है ना, वो दिखती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि इस्लाम आ जाए ना तो खुरदरापन आ जाता है, अक्खड़ मिजाज, माथे पे तेवरियां, हर वक्त फतवे देते हुए। नहीं, सॉफ्टनेस, नरमी, ये सहाबा किराम की शांति। उनको देख के पता चल जाता था कि ये लोग अल्लाह से भी डरने वाले हैं और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं। फिर अगली बात बताई, ज़ालिक मसलहुम फित तौरात, ये थी उनकी मिसाल तौरात में। यानी तौरात में सहाबा कराम की यही खूबी लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? कि इनके चेहरों पे आजजी होगी, मोहब्बत होगी, और वमसलहुम फिल इंजील। अब आगे इंजील में जो इनकी मिसाल दी गई वो बयान की जा रही है। यहाँ पहले ये समझ लीजिए कि तौरात और इंजील में जिस तरह अल्लाह के नबी की आमद की खबरें थी, इसी तरह सहाबा कराम की खूबियों का भी तस्करा था। बल्कि याद आ कहता है हजरत उमर का नाम तक भी तौरात में मौजूद था। यानी इतना क्लियर कट उन लोगों को, यहूद को पता था कि ये नबी आने वाला इनके साथी है, लेकिन तासुब की वजह से नहीं माने। अब इंजील में जो सहाबा कराम की मिसाल है उसको जरा समझते हैं। थोड़ी सी मुश्किल मिसाल है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेगा। कजर इन काफ मैंने माने लाइक सिमिलर, जर इन खेती, यानी जैसे एक खेती है, जमीन में जैसे पौधे लगते हैं ना, तो एक शुरू में कोई चीज निकलती है, फिर क्या हुआ, कजर इन अखरज शत अहू, निकाला उसने अपनी कोंपल। शता कहते हैं वो इब्तदाई कोंपल जो बीज फूटती है, जैसे बीज निकलता है ना, तो शुरू में एक पतली सी ग्रीन सी पतली पतली डंडी और उस पे हल्के हल्के पत्ते लगे थे ना, इसको शत्ता कहते हैं। शत्ता अंठा, कोंपल के मानों में बीज फूटने की बिल्कुल इब्तदाई हालत। और ये जो पहले लफ्ज गुजरा है ना जर इन, जरा वो फसल जो जमीन से निकले, जुर्रा कहते हैं किसान को, और जारे उनकी ये जमा है, मुराद यह है कि बहुत सारे किसानों के लिए। किसान जहां मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबे कराम कैसे थे कि इस्लाम इब्तदा में उठा, बिल्कुल हल्का सा इस्लाम का एक पौधा उठा, फिर क्या वफा आजरा हो, फिर उसने उसको मजबूत किया। आजरा क्या होता है, मजबूत करना, हमजा जा रो। इजार का लफ्ज सुना, इजार बंद को कहते हैं ना, जो कमर में डाला जाता है, तहबंद, बिल्कुल यानी वो मजबूत करता है ना, कमर जिस्म का मजबूत हिस्सा होता है, तो वहां डालते हैं। तो मुराद ये कि इजार जड़ को भी कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी गुजर चुके हैं कि वशदिद बिही अजरी, कि अल्लाह हारून के साथ मेरी कुव्वत को मजबूत कर दे। मुराद ये है कि वो शुरू में बड़ा कमजोर सा एक पौधा उठा, फिर फाज रहू, फिर उसने उसको मजबूत किया। फस तख लजा, फिर वो मोटा हो गया। इस तख लजा में गैन लाम जा है। गलीज का लफ्ज उर्दू में तो गंदे के लिए आता है ना, अरबी में मोटे के लिए आता है, थिकनेस के मानों में, सख्त के मानों में। यानी वो पहले आप देखिए तना छोटा सा होता है, फिर वक्त के साथ मोटा होने लगता है ना, कि एक वक्त आया कि वो तना मोटा हो गया। फस्तवा अला सू की ही, फिर वो खड़ा हो गया अपने तने पे। सूख साक ये पिंडली को कहते हैं, ये जो हमारी टांग का हिस्सा होता है ना ऊपर का, इस साक की जमा है सूख, और मुराद जहां तना है, यानी तने के ऊपर वो मजबूत हो गया। और कैसा लगने लगा, यु जिबु जुर्रा, खुश करता है किसान को। जुर्रा यहाँ मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि अल्लाह के नबी सल्लम अपनी इस फसल को देखकर खुशी महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ली यगीज अभी कुफार, ताकि गुस्सा दिलाए इसकी वजह से काफिरों को। अल्लाह के नबी खुश हो रहे थे, सहाबे कराम की बात थी, लेकिन काफिर इस्लाम के इस पौधे को फलता फूलता देखकर नाराज हो रहे थे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और अमल सवाले किए, मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अजीमा, उनसे बख्शिश का और अजर असीम का। तो ये एक मिसाल थी जिसमें सहाबे कराम की बहुत प्यारी तरीके से मिसाल दी गई कि शुरू में अल्लाह के नबी पर जब इस्लाम आया, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, अब अकेले थे, ज़म्मेलूनी ज़म्मेलूनी, मुझे चादर उड़ा दो चादर उड़ा दो, आप अपनी बीवी के पास गए, वो आपको लेके वरका बिन नौफल के पास चली गई। उस वक्त इस्लाम की बात ऐसे लग रही थी एक बिल्कुल नई बात है, अनहोनी बात है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने इस्लाम को मोटा किया। अबू बकर सिद्दीक आ गए, हजरत अली आ गए, हजरत जैद आ गए, हजरत बिलाल मुसलमान हो गए, ये हबाब बिन अरत मुसलमान हुए, और इस तरह वो छोटा सा एक पौधा एक पूरी खेती में बदल गया। आप देखिए जब भी कहीं भी दीन का काम शुरू होगा ना, ये मिसाल होगी। शुरू में इंसान एक पौधा होता है, वो कहते हैं ना तनहा चले थे, फिर लोग मिलते गए और काफिला बन गया। हक पे होते हुए इंसान को कभी ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं अकेला हूं, हम थोड़े हैं, असबाब नहीं है। जितने आप थोड़े होंगे, जितने असबाब कम होंगे, अल्लाह की मदद उतनी ज्यादा होगी। शर्त एक है कि आपकी नीयत ठीक हो, इखलास हो, आपका तरीक़ेकार ठीक हो। आप बहुत बड़े बड़े ग्रोहों की बजाय अगर आप उस काम की क्वालिटी को बेहतर कर ले, एक वक्त आएगा कि खैर निकलेगी। और आप देखिए कि इस्लाम कैसे फैला, कोई सोच सकता था उस दिन جب یہ اسلام آیا 313 بت تھے خانہ کعبہ میں، لیکن یہ اللہ کے نبی کے ساتھی جو آپ کو اتنے پیارے ساتھی ملے تھے، یہ وجہ ہے. اور حقیقت ہے کہ اسلام کے پھیلنے میں ملنے والے ساتھیوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. کئی کتنے بڑے خیر والے، علم والے، دین والے لوگ دنیا سے گزر گئے، آگے نہیں بات پھیلی. کیوں؟ ساتھی اچھے نہیں ملے. میں نے ایک جگہ کسی کا کال پڑھا، پتہ نہیں صحیح تھا نہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام کیوں اتنا معروف ہے باقی ائمہ کرام کی نسبت. تو کہتے ہیں کہ ان کو ساتھی بہت اچھے ملے، ان کے شاگرد بہت جینیس قسم کے تھے جنہوں نے ان کے مشن کو آگے لے کے رکھا. تو بہرحال گھبرانا نہیں چاہیے، اصل یہ ہے کہ کام صحیح کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہی کھیتی بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتا کے ہر دور کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہر دور میں اسلام پھیلے گا تو کفر کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن انسان اپنا کام کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم میں سے اگر کسی نے احد پہاڑ بھی خرچ کر دیا تو تم میرے صحابہ کے ایک مد، یعنی تھوڑی سی جیسے 1 کلو کہہ لے، ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں قربانیاں دی. کسی بھی کام کے شروع میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مضبوط حوصلے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت ان کی تربیت نہ کی جائے تو بعد میں وہ بلڈنگ ساری کمزور ہوتی ہے. مثلا دیکھیں کہ یہ جگہ بنی ہے نا، اب اس کے اوپر کوئی 10 منزلیں بنا لے، بن جائیں گی، شرط کیا کہ اس کی بنیادیں اچھی ہوں. اگر بنیاد والے لوگوں کے اندر کھوٹ آ جائے، ان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوں، تو وہ پھر چل نہیں پاتے. اور آپ دیکھیے کیسے مشکل وقت میں حدیبیہ کا جو موقع تھا، صحابہ کرام جیسے ہی لوگ تھے کہ جو مان گئے نا، ورنہ تو بدگمانی ہوتی، لیڈر سے ہی لوگ ناراض ہو جائیں، یہ جی کہ آپ نے شروع کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہم اپنا گروپ بنا رہے ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہے. نہ اللہ کے نبی کے خلاف ہوئے، نہ اسلام سے پیچھے ہٹے، بلکہ حضرت عمر نے ذرا سی بات اونچی کی تو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہ اعوذ باللہ پڑھو، کیا بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی کو زیادہ پتہ ہے، کیونکہ ان کے دل جڑے ہوئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والوں کے دل جب آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے فتنوں کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی مشن میں شامل کر لے کہ جو واقعی اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے قابل ہوں. صحابہ کرام پہ بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہم ایک سیریز بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک پیپر لے کے پھر رہی تھی، سوچا کہ اس موقع پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بات ہے. ایک واقعہ ہے تاریخ کا، آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا کہ ہو کہ نہ ہو، تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں ان آیتوں کی روشنی میں کہ صحابہ کرام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو 1300 سال بعد بھی صحابہ کرام کی مقدس لاشیں تر و تازہ ہیں، کہ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد اللہ ان کو قبروں میں بھی تکلیف نہیں دیتا. میرے سامنے یہ تکبیر میگزین ہے، اس کا 7 نومبر 1991 کا جو شمارہ ہے، تو اس کا پیج 40 ہے. تو میں پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ اس کو اسی طرح سن سکیں جیسے ہے. یہ واقعہ موجودہ صدی کا ہے، یعنی یہ جو پیچھے گزری ہے، ابھی تو یہ 2000 شروع ہو گیا نا، تو 1900 والی جو سینچری تھی اس کا یہ واقعہ ہے. جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمران تھے، ایک روز صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد شاہ فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے، کہا کہ میری قبر میں پانی اتر آیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی آ رہی ہے، لہٰذا آپ ہمیں محفوظ مقامات پر منتقل کرا دیجئے. یاد رہے کہ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے، یعنی یہ وہی تھے جن کو غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور ان کو صاحب سر رسول کہتے ہیں. اور آپ بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے، جبکہ جابر بھی غزوات میں شریک رہے، اور جب کبھی رسول اللہ کو قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے قرض لیا کرتے. حضرت حذیفہ کے خواب میں تشریف لانے کو عراق کے شاہ فیصل بھلا بیٹھے اور امور مملکت نپٹانے میں مصروف ہو گئے. دوسری رات پھر حضرت حذیفہ شاہ عراق کے خواب میں آئے اور وہی بات دہرائی، اتفاقاً شاہ عراق کو پھر یاد نہ رہا. تیسری شب حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ میری اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں میں پانی اتر آیا ہے، لہذا آپ ہمارے مزارات محفوظ مقامات پر منتقل کرا دیجئے. ہم 2 بار شاہ عراق کو بشارت دے چکے ہیں مگر وہ بوجہ مصروفیت بھول گئے. دیکھیے کہ آج کے دور میں کسی کو ایسا خواب آ جائے تو لوگ فوراً نمبر بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں، یعنی وہ ایسا خواب تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو اتنا نوٹس نہیں دیا. تیسری دفعہ یہ ہوا، मुफ्ती आजम फौरन ख्वाब से बेदार हुए और 1300 साल बाद ख्वाब में तशरीफ लाने वाले सहाबी की बात से परेशान हो गए। फौरन वजीर आजम नूरिया सईद पाशा से फोन पर बात की। नूरिया सईद पाशा मुफ्ती आजम के साथ शाह इराक की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें ख्वाब के बारे में बताया। शाह फैसल अव्वल ने ख्वाब सुनकर कहा, मैंने वाकई ये ख्वाब देखा था मगर उमूर मुमलिकत की वजह से भूल गया, लेकिन वो तब्दीली मज़ारात से पहले इख्तियातन इस बात का सबूत चाहते थे कि वाकई पानी मज़ारात में दाखिल हो चुका है कि महज ख्वाब है। चुनाच उन्होंने महकमा तामीरात के इंजीनियर को हिदायत की कि वो पहले मज़ारात के करीब की ज़मीन की मिट्टी का टेस्ट करवाएं, क्योंकि शाह इराक को डर था कि महज ख्वाब की बिना पर सहाबा कराम के मज़ारात की बेहरमती ना हो, यानी कि सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर हम एक्शन ना ले। ये एक बहुत अच्छा फैसला था कि पहले हम देखें कि वहाँ पानी है कि नहीं है। महकमा तामीरात के इंजीनियर्स ने मुफ्ती आजम के सामने मज़ारात से दरिया के रुख पर 20 फुट के फासले पर बोरिंग करवा कर देखा। बोरिंग से निकलने वाली मिट्टी को लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेजा। टेस्ट रिपोर्ट में मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और इसमें नमी का कोई शायबा भी मौजूद नहीं था, यानी जहाँ उनकी कब्रें थी तो उसके करीब मिट्टी में कोई भी पानी नहीं मिला। रिपोर्ट मिलने के बाद शाह इराक मुफ्ती आजम नूरिया सईद पाशा और दीगर अहलकार बेफिक्र हो गए और आराम की नींद सोए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा फिर शाह इराक के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरे मज़ार में पानी और जाबिर के मज़ार में नमी शुरू हो गई है, लिहाजा हम दोनों को यहाँ से मुंतकिल करके दरियाए दजला से ज़रा फासले पर मुंतकिल कर दें। बादशाह ने इनकी बात को सिर्फ ख्वाब समझ कर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि माहिर तामीरात ने टेस्ट रिपोर्ट पर मज़ारात में नमी की गैर मौजूदगी के दस्तखत कर दिए थे। अगली रात हज़रत हुज़ैफ़ा मुफ्ती आजम के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और नाराज़ होकर कहा कि बादशाह हमारी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। मुफ्ती आजम ने शाह से राबता किया तो शाह इराक मुफ्ती आजम पर सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आप ख्वाब पर यकीन कर रहे हैं जबकि आप माहरीन अराजी के साथ बोरिंग और मिट्टी के लिए टेस्ट रिपोर्ट देख चुके हैं। सहाबा कराम के बार बार ख्वाब में आने की वजह से इनकी कदर व मंजिलत के पेश नज़र मुफ्ती आजम बादशाह से इस बात पर डट गए कि मज़ारात दूसरी जगह मुंतकिल करना ज़रूरी है। चुनाचे शाह इराक ने मुफ्ती आजम से फतवा लेने के बाद ईद उल अदहा और जुहर की नमाज के बाद मज़ारात के खुलवाने का ऐलान रेडियो टीवी और अखबारात से करवा दिया। 1300 साल बाद कब्रों की तब्दीली और इससे मुतल्लिक खबर ने दुनिया भर में धूम मचा दी। ये मंजर देखने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया से तार टेलीफोन खतूत शाह इराक के पास आने शुरू हो गए। इन खतूत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने मज़ारात की मुंतकली में शिरकत की दरख्वास्त की थी। चूंकि हज का जमाना था इस्लाम के फर्जंद अरकान फरीज़ा हज अदा कर रहे थे, इन सब लोगों ने इसरार किया कि मज़ारात की तब्दीली की तारीख में तौसी कर दी जाए, यानी कुछ दिन बाद इसको किया जाए ताकि सहाबा कराम को अपनी आंखों से देख सकें और इनके जनाजे में शिरकत कर सकें। इधर ईसाई ख्रिमेनिस्ट ममालिक के अवाम और ख़बर रसां एजेंसियों ने भी सफ़र में कटने वाले दिन मांगे। शाह इराक के लिए ये लम्हात इंतहाई परेशान कुन थे। एक तरफ सहाबा कराम का ख्वाब में बार बार आना, दूसरी तरफ आलमी दुनिया का चंद दिन रुकने का दबाव, तीसरे मज़ारात में पानी रिसने से मज़ारात को मज़ीद नुकसान पहुँचने का डर। इस वक्त हुकूमत इराक एक अजीब मखमसे का शिकार थी कि बिलाखिर इनके रफका के जहन में एक तरकीब आई कि मज़ारात से कोसों दूर बहने वाले दरिया के रुख पर 10 फिट के फासले पर एक लंबी और गहरी खंदक खुदवा कर इसमें कंक्रीट से भराई करवा दी गई ताकि मजीद नमी आगे न पहुंचे, और ऐलान कर दिया कि हज के 10 रोज बाद मज़ारात की मुंतकली अमल में आएगी। इन 10 दिनों में दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्कों के दिलचस्पी रखने वाले अवाम बगदाद से 40 मील दूर सलमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए। याद रहे कि इस दौरान सहाबे कराम ख्वाब में तशरीफ नहीं लाए। इस मौके पर इराक ने अपने मुल्क आने वाले हर मजहब और अकीदे के लोगों पर से कस्टम पासपोर्ट और करेंसी की पाबंदी खत्म कर दी। बिलाहिर खच के 10 दिन बाद पीर के रोज जब 5 लाख अफराद की मौजूदगी में मज़ारात को खोला गया तो उस वाकई दोनों सहाबे कराम की कब्रों में पानी उतर चुका था। चुनाचे पहले से तैयार एक क्रेन जिस पर एक स्ट्रेचर कसा हुआ था मज़ारात में दाखिल करके नाश मुबारक को यके बदीगरे बाहर निकाला। इस मौके पर मौजूद इस्लामी सरबराहान मिस्र के शाह फारूक, जो इस वक्त मिस्र के वली अहद थे, कमाल अतातुर्क के वजीर मुख्तार और दीगर उलमा व वज़रा ने स्ट्रेचर से नाश मुबारक को अकीदत और अख्तराम से वहाँ मौजूद शीशे के बक्स में लिटाया। इस वाकये की कार्रवाई को एक जर्मन फिल्म साज कंपनी ने वहां मौजूद लोगों के लिए 30 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी स्क्रीन पर टेलीविजन कैमरे की मदद से दिखाया। मजीद 4 बड़े बड़े स्क्रीन इसलिए लगाए गए कि 5 लाख अफराद जो नाशों के करीब नहीं पहुंच सकते थे, वो भी आराम से अपनी जगह खड़े होकर ये कार्रवाई देखते रहें। लोगों का ठाठे इमारता समंदर ये देखकर हैरान रह गया कि 1300 साल गुजरने के बाद भी सहाबे कराम के कफन और दाढ़ी बिल्कुल सफेद थे, और इन्हें देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि अभी कुछ घंटे कबल इन सहाबा की वफात हुई है। आपको पता है कि नेक लोगों को फिर कब्रों में मट्टी नुकसान नहीं देती, जिसको अल्लाह चाहे। अगरचे हजरत हुजैफा बिन यमान का वसाल 36 हिजरी में और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का वसाल 74 हिजरी में हुआ, दोनों सहाबे कराम के चेहरे नूर से चमक रहे थे और आंखों में बे इंतहा चमक थी। वहां मौजूद लोगों ने सहाबे कराम की आंखों में आंखें डालना चाहीं तो इन पर खौफ तारी हो गया, कोई आंखों से आंख नहीं मिला सकता था। इत्तेफाक से एक जर्मन माहिर अमराज़ चश्म यानी आई स्पेशलिस्ट वहां मौजूद था। इसने जो इतनी पुरसरार चमकीली आंखें देखी तो वो फौरन मुफ्ती आजम की तरफ बढ़ा और इनसे कहा कि आप मुझे मजहब इस्लाम का दर्स दीजिए, और यूं इसी मौके पर मुफ्ती आजम के हाथों वो इस्लाम ले आया। आम पब्लिक के दीदार के लिए जब चेहरे मुबारक पर से कफन हटाया जा रहा था तो इस वक्त इराक की फौज ने सहाबे कराम को तोपों की सलामी पेश की। जिस वक्त जनाजे को कंधा देकर नए मजारात की तरफ ले जाया जा रहा था, इस वक्त इराकी फिजाइया फिजा में गोते लगा लगा कर सहाबे कराम को सलामी पेश कर रही थी और मजमे पर मनों टनों के हिसाब से गुलाब के फूल बरसा रही थी। मजारात की मुंतकली का सफर मजमे की वजह से 4 घंटे में तय हुआ। जब ये जनाजे नए मजारात के करीब हजरत सलमान फारसी के मजार के पास पहुंचे तो इराकी बहरिया फिजाइया और बरी अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और कंधा देने वाले सरबराहा ने मुमलिकत वुजरा और उलमा पर फूल बरसाए। जिस वक्त सहाबे कराम को नए मजारात में मुंतकिल किया जा रहा था, फिजा अल्लाह अकबर के वाशिगाफ नारों फौजी बैंडों और तोपों की घन गरज से गूंज उठी। 1300 साल के बाद कब्रों की मुंतकिली के इस वाक्य को देखकर वहां मौजूद हजारों की तादाद में लोगों ने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया। तो बहरहाल रदी अल्लाह अन्हम, अल्लाह उनसे राजी हुआ, और जिनकी जिंदगी खूबसूरत होती है फिर अल्लाह ताला उनकी मौत के बाद भी हिफाजत करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल वाला बना दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب